जनाब मीर जनरल जाहिद बशीर साहब का मजमून पाक चीन दोस्ती के समारात 5 फरवरी 2022 को रोजनामा 92 न्यूज में शाया हुआ। वजीर आजम इमरान खान अपने अहम वजरा के 4 रोजा दौरे पर चीन पहुंच चुके। पाकिस्तान के लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस दौरे से पाक चीन दोस्ती एक नई बुलंदी को छुएगी। दौरे से पहले वजीर खारजा, वजीर मनसूबाबंदी और कॉमर्स के वजीर ने जो अखबारी बयान दिए वो भी एक नई उम्मीद की तरफ इशारा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बैन अवी ताल्लुकात में दोस्ती की बुनियाद बाहिमी मफादाती होते हैं। खुशकस्मती से चीन और पाकिस्तान के बाहिमी मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चीन का सबसे बड़ा हरीफ अमेरिका भी इस कोशिश में है कि पाकिस्तान और खत्ते के दूसरे ममालिक चीन से किसी हद तक दूर रहे। चीन के लिए पाकिस्तान एक मुनफरिद हैसियत रखता है, उसकी अहमियत खत्ते के तमाम ममालिक से ज्यादा है। इसलिए चीन की हतुलवसा कोशिश होगी कि इस दौरे में पाकिस्तानियों को बहुत सी नई मराद दी जाए और पाकिस्तान के साथ अपने स्ट्रेटेजिक दिफाई और मुआशी ताल्लुक को नई बुलंदियों तक ले जाया जाए। चीन जाने से पहले वजीर खारजा ने जिस इनमाक से एयरफोर्स और नेवी के हेडक्वार्टर्स के दौरे किए उससे जाहिर होता है कि इंशाल्लाह एयरफोर्स और नेवी में चीन के मजीद साजो सामान की तरसील होगी। पाकिस्तान आर्मी पहले ही अपनी ज्यादा जरूरियात चीन से पूरी करती है। सी पैक की कामयाबी के लिए भी पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक अहमियत है। अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया और यूरोप के ममालिक पाकिस्तान के रास्ते से सी पैक से मुंसलिक होंगे। सोचने की बात यह है कि इस इंतहाई अहम जोग्राफियाई अहमियत के बावजूद सी पैक के समरा से क्यों महरूम है। पाकिस्तानी कौम की उम्मीदों के बरखिलाफ ना तो अभी तक सी पैक के इंडस्ट्रियल जोन फाल हो सके और ना ही ग्वादर में तब्दीली की कोई रमक नजर आती है। ग्वादर पोर्ट की तमाम तर अहमियत के बावजूद ग्वादर में बिजली है ना पानी और गैस। जबानी जमा खर्च के अलावा ग्वादर में कोई इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आती। अगले दिन इन्वेस्टमेंट बोर्ड के चेयरमैन का एक इंटरव्यू सुनने का इत्तेफाक हुआ। उन्होंने ग्वादर की तरक्की के बदल दो बांग दावे किए लेकिन मुस्तकबिल का सीगा ही इस्तेमाल किया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा और ये कि पिछले 1.5 माह में उन्होंने ग्वादर में इन्वेस्टमेंट के लिए 20 कॉन्फ्रेंसेस की और वजीर आजम पूरी तैयारी के साथ चीन रवाना हुए हैं और चीन के दौरे के बाद मनसूबों की रफ्तार में बहुत तेजी देखने में आएगी। चेयरमैन को अपनी नशिस्त संभाले हुए भी 2 माह ही हुए हैं। वो काफी मेहनती और काबिल दिखाई देते हैं। अल्लाह करे कि उनकी मनसूबा बंदी मौसर साबित हो। इंटरव्यू के आखिर में दिलचस्प इंकशाफ भी हुआ कि मौजूदा हुकूमत में 7वें चेयरमैन हैं। इसका मतलब यह कि इन्वेस्टमेंट बोर्ड के चेयरमैन भी इसी रफ्तार से तब्दील हुए हैं जिस रफ्तार से पंजाब के सेक्रेटरी और आईजी तब्दील होते रहे हैं। ये बड़े ओहदे हैं जिनकी तब्दीली का पता चल जाता है, वरना मरी के हादसे के बाद ये बात सामने आई के मई के एसी भी इतनी ही तादाद में तब्दील हो चुके हैं। हुकूमत को एक ऐसी मशक करनी चाहिए कि इस बात का पता चलाया जाए कि सिलेक्शन सिस्टम में ऐसी क्या खराबी कोई अफसर भी हुकूमती तसल्ली के मुताबिक काम नहीं कर पाता। दुनिया में किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के मेयार के मुताबिक 4-6 महीने के तकर्रुर में बेहतरीन अफसर भी तसल्ली बख्श काम नहीं कर सकता। पहले 4-6 माह तो काम को समझने में लग जाते हैं और जब डिलीवर करने का वक्त आता है तो नया पोस्टिंग ऑर्डर उनके सामने होता है। इस तरीके कार का एक नुकसान ये भी है कि अफसर को शुरू से ही अंदाजा होता है कि वो 1 माह के लिए आया है, इसलिए वो अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेता और अपना ज्यादा वक्त अपनी आइंदा पोस्टिंग की मनसूबा बंदी और कोशिश में गुजार देता है। वो किसी दूरस्थ मनसूबे के बारे में सोचने की जहमत ही नहीं करता। इसी वजह से मौजूदा हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी में भरोसे का रिश्ता कायम नहीं हो सका जो मुअसर कारकर्दगी के लिए जरूरी है। हुकूमत का हर अफसर वक्त गुजारी की पॉलिसी पे कामसिल है। ग्वादर और गिरदोनिवा के इलाके में कानून की हुक्मरानी की सूरत हाल भी नागुफ्ता भी है। जगह जगह मौजूदा सिक्योरिटी चेक पोस्ट किसी भी इन्वेस्टर के लिए अच्छी सूरत हाल की निशानदेही नहीं करती। पिछले दिनों ग्वादर में मौलवी हिदायत के पुरअमन धरने ने भी ग्वादर की नाम निहाद तरक्की की कलई खोल कर रख दी। एक गैर मारूफ सियासी कारकुन हजारों लोगों को जमा करने में कामयाब रहा क्योंकि उनके मुतालबात नहायत सादा और लोगों के दिल के करीब थे। उनका सादा सा मुतालबा था कि इन्हें पानी, बिजली और गैस मुहैया की जाए और मकामी लोगों को रोजगार दिया जाए। حکومتی وعدوں پر دھرنا تو ختم ہو گیا لیکن اس کے بعد بھی کوئی مثبت پیش رفت نظر نہیں آئی اور وہی لوگ دوبارہ دھرنا دینے کے لیے پر توڑتے نظر آتے ہیں۔ نوشکی اور پنجگور میں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر تازہ ترین حملے بھی یہی ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح دشمن طاقتیں عام لوگوں کی محرومیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہی ہیں۔ اگرچہ دہشت گردوں کا قلعہ قما کرنا اس کا فوری حل ہے اور ان کی ترقی کے لیے ایسے منصوبے بنائے جائیں کہ ان کے ثمرات جلد از جلد مقامی لوگوں کو نظر آئیں، بدقسمتی سے کسی بھی حکومت نے آج تک بلوچستان کی حقیقی ترقی کے لیے خاطر خواہ کام نہیں کیا۔ زیادہ سے زیادہ بلوچستان کے سرداروں کو خوشحالی سے ہم کردار کرنے کو ہی کافی سمجھا گیا ہے۔ بلوچستان کی بدحالی کی حقیقی ذمہ دار یہی سردار ہیں اور یقیناً بلوچستان اور مرکز کی حکومتیں بھی ہیں۔ آج کی اخبار کے مطابق امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے عین چینی دورے کے دن بڑے عرصے بعد پاکستان کو امریکہ کا اسٹریٹجی پارٹنر قرار دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک سفارتی بیان ہے اور حقیقت سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ راہل گاندھی کا راجیہ سبھا میں یہ بیان کہ مودی کی پالیسی کی وجہ سے چین اور پاکستان ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے ہیں ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا درجہ رکھتا ہے۔ راہل گاندھی نے یہ بھی کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں مودی کے اقدامات نے بھارت کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ درست ہے کہ چین ہمیں جو بھی رہتے دے اور مالی امداد بھی مہیا کرے، مگر جب تک ہم اپنا قومی رویہ تبدیل نہیں کرتے اور خود اپنی ترقی کے لیے تگ و دو نہیں کرتے، ہماری حالت بدلنے کی توقع کم ہی ہے۔ آخری تجزیے میں خدا کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود کو نہ بدلنا چاہے۔